नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक इस्तेमाल करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक के दौरान स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने दोहराया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सचिव ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSB के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और कुछ अन्य परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से सीमा सुरक्षा को लेकर पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, AI, सूचना और संचार, विनिर्माण, औषधि डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल जबकि ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा को उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। साथ ही ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब अमरीकी डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर करीबी नजर रखने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। श्री नड्डा ने कहा कि ये विरोध न तो छात्रों के हित में है और न ही न्याय के लिए। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।